कुछ भी तो नहीं, कह विनित मुस्कुरा दिया। अयांश भौंए चढ़ाते हुए बोला, रियली? अयांश को अपनी तरफ सवाल भरी नज़र से देखता पाकर विनित ने फिर आरवी का जिक्र छेड़ दिया। एक बात बताओ जानेमन, तुम आरवी को दूरबीन से अपनी खिड़की पर खड़े होकर देखते हो तब तुम्हें सेम वही फीलिंग आती होगी ना जो पड़ोसन मूवी के हीरो सुनील दत्त को सायरा बानो को देखकर आती थी? जैसे भोला को अपनी बिंदु को देखकर अच्छा लगता था, वैसे ही तुम्हें अच्छा लगता होगा ना आरवी को देखकर, कह विनित गुनगुनाने लगा। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है, चांद का टुकड़ा नहीं पूरा चांद, आरवी के बारे में सोचते हुए आयांश बोला। ओ तेरे चांद, इसका मतलब बहुत अच्छी लगती है आरवी तुम्हें, और उसे देखना भी, कोई शक? नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा ये बताओ, कभी तुम्हारे चांद ने तुमसे चांद मांगा? कहेगी मुझे चांद देखना है, चांद ला कर दो, तो क्या करोगे? सुना है महबूब अपनी महबूबा के लिए चांद तारे तोड़ लाते हैं, तुम लाओगे क्या अपने चांद के लिए चांद? विनित में भौंए उचकाते हुए पूछा। ये सुन अयांश तिरछा मुस्कुरा दिया। उसने अपना ग्लास खाली कर टेबल पर रखा। चांद को चांद की क्या जरूरत, फिर भी कहेगी चांद लाने को तो आईना ला दूंगा, देख लेगी चांद मेरे चांद को। विनित ने उसी पल अपना ग्लास खाली कर टेबल पर रखा और ताली बजाते हुए बोल पड़ा, छा गए बॉस, क्या बात है, जानेमन तुम तो लव गुरु टाइप निकले, मुझे भी ट्रेनिंग चाहिए तुमसे, तुम मुझे आज से ही ट्रेन करो, जब तक मेरी लाइफ में वो लड़की आएगी जिससे मुझे प्यार होगा तब तक मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा, फिर मैं भी प्यार भरी प्यारी प्यारी बातें करूंगा, गाल पर हाथ रख कोहनी टेबल पर टिकाकर सोचते हुए बोला, उफ मेरे प्यारे प्यारे ख्वाब। तभी अयांश लैपटॉप बंद कर चेयर से खड़ा हो गया। विनित हैरान होते हुए बोला, कहाँ? अयांश टेबल से फोन उठाकर अपने कोट में रखते हुए बोला, अपने चांद के पास। विनित चेयर से खड़ा होते हुए बोला, तुम अपने चांद के पास चले जाओगे तो मैं क्या करूंगा? तभी अयांश ने टेबल से ब्लैक फाइल उठाई और उसे विनित के आगे फेंक दी, तुम ये करो, कल सुबह तक ये काम हो जाना चाहिए। विनित मुंह बनाते हुए बोला, और काम? पर मैं अपना सारा काम खत्म कर चुका हूँ। अयांश वहां से जाते हुए बोला, ये भी कर दो खत्म। विनित आमाज देते हुए बोला, और मेरी ट्रेनिंग? उसकी जरूरत नहीं, जिसका इंतजार है तुम्हें उसे आने दो, तुम खुद ही एक्सपर्ट हो जाओगे विदाउट ट्रेनिंग। इतना बोल अयांश केबिन से चला गया। विनित अयांश के इस बात पर मुस्कुरा दिया। उसने मुंह बनाते हुए टेबल पर पड़ी फाइल उठाई और उसे माथे पर मारते हुए बोला, मर गया और काम दे गया जाते जाते, खैर देकर गया है तो करना ही पड़ेगा, जो हुक्म मेरे आका, कह विनित मुस्कुरा दिया और अयांश आरवी के बारे में सोचते हुए बोला, थैंक यू आरवी, थैंक यू सो मच, अयांश की जिंदगी में आकर तुमने उसे मुस्कुराना हंसना सिखा दिया, जितना थैंक यू बोलूं कम ही है तुम्हें, तुम्हारे कारण अयांश खुश रहने लगा है और उसे खुश देख मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए, ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हों दरमियान तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, लाला लाला, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम में धीमी आवाज में गाना चल रहा था। अयांश आरवी का हाथ अपने हाथ में लिए सीने पर रखे ड्राइव कर रहा था और आरवी आंखें मूंदे उसके कंधे से सिर टिकाए बैठी थी। तभी अयांश ने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए मेहरा सदन के बाहर। आरवी आंखें खोल अयांश से दूर होते हुए खिड़की से बाहर देखती है और मुस्कुराते हुए म्यूजिक सिस्टम बंद कर अयांश की ओर देखते हुए कहती है, आपके साथ वक्त का पता ही नहीं चलता, घंटे भी मिनटों जैसे लगते हैं, देखिए मिस्टर मेहरा पता भी नहीं चला, और मेहरा सदन की ओर हाथ से इशारा करते हुए, घर आ गया? अयांश पलके झपका देता है और आरवी का हाथ चूम उसके आगे उसका हाथ छोड़ते हुए कहता है, राइट मिसेस मेहरा, पता भी नहीं चला और घर आ गया। आरवी हंसते हुए कहती है, वक्त की रफ्तार तेज हो गई है सच में, या हमें ही वक्त दौड़ता नजर आ रहा है, या तो वक्त जल्दी चलकर हमें टीज कर रहा है ताकि हम चाहकर भी ज्यादा देर साथ पास न रह सकें, या हम जितना वक्त साथ बिता रहे हैं वो हमें कम लग रहा है जिसके चलते हम वक्त को दोष दे रहे हैं जबकि हम लालची हो रहे हैं, वक्त में खराबी है या हम में? ये सुन अयांश बस मुस्कुरा दिया। आरवी अपना बैग लेकर गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहती है, सच में आप शाम तक आ जाएंगे? अयांश ने आरवी की ओर देखते हुए जवाब दिया, ओके सी यू सून, आरवी ने मुस्कुराते हुए कहा और गाड़ी से उतर दरवाजा बंद कर मेहरा सदन में चली गई। अयांश उसे जाते देख रहा था। आरवी अंदर जा रही थी कि उसकी नजर राजा पर पड़ी जो मेन गेट से थोड़ा दूर खड़ा था। एक बार तो आरवी ने उसकी ओर देखते हुए अपने कदम आगे की ओर बढ़ा दिए पर उसी पल कदम पीछे लेकर राजा के सामने आ खड़ी हुई और अपना हाथ हिलाते हुए बोली, हेलो। पर राजा ने ना कोई रिएक्ट किया और ना ही आरवी के हेलो का कोई जवाब। वो सख्त चेहरा लिए एकदम सीधा हाथ बांधे खड़ा रहा। ये देख आरवी हैरान होते हुए फिर बोली, इंसान हो आप या रोबोट? इस पर भी राजा ने कुछ नहीं कहा। ये देख आरवी फिर कुछ बोलती कि उसका फोन बज उठा। आरवी राजा की ओर देखते हुए अपने हाथ में मौजूद फोन की ओर देखती है, जिस पर अयांश का माई डार्लिंग हस्बैंड नाम शो हो रहा था। आरवी राजा से दूर होकर कॉल रिसीव करती है। जी, क्या कर रही हो तुम वाइफी? अयांश भौंय से कोड़ते हुए बोला। मैं कर रही हूँ आपको याद, आरवी ने मुस्कुराते हुए कहा। गार्ड के साथ मिलकर? अयांश आरवी की ओर देखते हुए बोला। ये सुन आरवी की आंखें फैल गईं। वो फट से मेन गेट की तरफ मुड़ी। अयांश की गाड़ी अभी भी वहीं थी। ये देख आरवी थूक निकल लेती है और मन ही मन खुद से कहती है, मिस्टर मेहरा गए नहीं, ये यहीं है। मुझे तो लगा मुझे छोड़कर चले गए, पर गए क्यों नहीं? क्या सोच रही हो, मैं गया क्यों नहीं? जा रहा था मैं, फिर रुक गया। मेरी वाइफी तहकीकात जो कर रही थी, कुछ पता चला? आरवी राजा की ओर गर्दन घुमाकर देखते हुए कहती है। कहाँ पता चला, समझ ही नहीं आ रहा, इंसान है या रोबोट? अयांश सख्ती से कहता है। वाइफी? ये सुनते ही आरवी ने फट से गर्दन सामने कर ली और अयांश की गाड़ी की ओर पलकें झपकाते देखते हुए कहती है, आप कहाँ हैं, मुझे दिख नहीं रहे? तुम मुझे दिख रही हो? अयांश ने इतना कहा कि आरवी को समझने में एक पल नहीं लगा माजरा क्या है। उसने उसी पल खुद के सिर पर चपत लगाई और खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, मैं ना सही, मिस्टर मेहरा तो मुझे देख सकते हैं। गाड़ी के बाहर से अंदर बैठा शख्स दिखाई नहीं देता, पर गाड़ी के अंदर से बाहर का सब दिखता है। आरवी मूल रही थी जो अयांश को भी सुन रहा था। तभी अयांश बोला, राइट वाइफी, मैं तुम्हें देख सकता हूँ और तुम जो कर रही हो वो भी मुझे दिख रहा है। ये सुनते ही आरवी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने उसी पल फोन कट किया और अंदर की ओर भाग गई। अयांश उसे जाते देख नामे सिर हिलाते हुए फोन को कोट में रखता है और फिर एक नजर राजा को देख तिरछा मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट कर वहां से चला जाता है। आरवी भागते हुए अंदर पहुंची और अपने कदमों को विराम देकर हांफते हुए खुद से बोली, बच गए, वरना डांट पड़ जाती मिस्टर अक्करचंद से। तभी आरवी की नजर हॉल में दिनकर जी के साथ बैठे जज साहब पर पड़े, जो दिनकर जी के साथ बातों में लगे थे। आरवी उनको देख हैरान हो गई। वो आगे बढ़ते हुए खुद से बोली, ये जज साहब यहाँ, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं खुद देखने तो नहीं चले आए हमारा गृहस्थ जीवन सही चल रहा है या नहीं? साथ रहने को कहा था हम साथ रह रहे हैं या नहीं? अपने शादीशुदा रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं? ये सब खुद पता करने तो नहीं आ गए?
तभी दिनकर जी की नजर आरवी पर पड़ी। आरवी बेटा, आ गए आप, देवेंद्र हमारी पोता बहू भी आ गई। जज साहब की ओर देखते हुए, आइए बेटा। फिर आरवी की ओर देखते हुए, आपको हम अपने दोस्त से मिलवाते हैं। आरवी जो जज साहब की ओर ही देखते चली आ रही थी, सोफे के पास रुक वो अपना बैग सोफे पर रखती है। दोस्त? दिनकर जी जज साहब की बाहू पर हाथ रखते हुए कहते हैं, हाँ हमारे दोस्त देवेंद्र कुमार। आरवी एक नज़र दिनकर जी की ओर देख वापस जज साहब की ओर देखते हुए कहती है, देवेंद्र कुमार, जज साहब आपके दोस्त हैं दादू? क्रमशः।